نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے پیارے نبی کی امت میں سے اٹھایا اور اس نے ہمیں دین کی سمجھ دی. اور آج کا میرا یہ سیشن ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ جو قرآن پاک کے سفر سے گزر چکے, گزر رہے ہیں یا گزر جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک چیز جس پہ آج ہم بہت ضروری بات کرنا سمجھیں گے وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے کے بعد گھر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب چونکہ قرآن پاک پورا ہو گیا تو اب ہمیں اور کیا کہنا ہے یا ہمارے پاس کیا ہے. تو انشاءاللہ اس میں تعلیم و تربیت کی چند بنیادی باتیں ہوں گی. آپ کہہ لیجئے کہ آج کے طالب علم کل کے استاد ہیں, آج کے متعلم کل کے معلم ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ کے میرے لیے یہ بڑی خوشی کا ایک مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے علم کے لیے چنا. اگر آپ آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں جو بالکل ہی آیت 29 سے شروع ہو جاتا ہے سورت بقرہ میں, تو آپ دیکھیں گے کہ انسانیت کو جو سب سے پہلی نعمت دی گئی, اگر میں صرف آپ کے ریمائنڈر کے لیے آیت 29 کا ترجمہ رکھوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ سے مراد جو نیابت کرے گا, جو میرے مشن کی تکمیل کرے گا, جو اس دنیا کے مقصد کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے وہ یہ کام کرے گا. قالوا اتجل من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اب جواب ہے فرشتوں کا, کیا آپ اس کو بناتے ہیں اس دنیا میں جو فساد بھی کرے گا اس میں اور خون بھی بہائے گا؟ یعنی فرشتوں نے ایک اندیشے کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صفائی پیش کی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, حالانکہ ہم ہیں آپ کی تسبیح بھی کرتے اور آپ کی حمد بھی بیان کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اگر آپ دے سن رہے تھے غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ تکرار عین لام میم کی ہے. ابھی تک آدم کا تذکرہ ہوا ہے لیکن اب ذرا اگلی آیت 31 کا غور سے سنیے گا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. جہاں آدم کا تذکرہ شروع ہوا, جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق اور ان کے دنیا میں بھیجے جانے کی بات شروع کی, تو پہلا لفظ کے استعمال کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور سکھائے اللہ نے آدم کو سارے کے سارے نام. اس ایک لفظ پہ غور کریں تو ہمیں علم کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ آدم کے تذکرے سے پہلے, دیکھیے اردو میں ایک جملہ ہوتا ہے آدم کو سکھایا, اردو میں بولتے ہیں نا آدم علیہ السلام کو سکھایا, اور دوسرا جملہ کہ سکھایا آدم کو. آپ نے گرامر میں بھی یہ چیز پڑھی ہوگی کہ جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے نا وہ پہلے لائی جاتی ہے. جملہ اسمیہ اور خبریہ میں کیا فرق ہے؟ اسمیہ میں نام پہلے ہوتا ہے, خبریہ میں خبر پہلے ہوتی ہے. یعنی یہاں اگر یہ جملہ ایسے ہوتا کہ آدم کو سکھائے تو پھر لفظ آدم پرومیننٹ ہو جاتا, لیکن اب کہ علم آدم الاسماء کلہا, اب سکھانے کی بات ہے. تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ ہم آدم اور ابلیس کا قصہ اس وقت نہیں دہرائیں گے, اس وقت ہم علم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ علم حقیقت میں ایک انسان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے, لیکن اگر اس علم کو پانے کے بعد ہماری تربیت نہ ہوئی ہو, ہمارا کردار وہ نہ ہو کہ جو مطلوب کردار تھا, تو پھر ہم اس کو پانے کے باوجود بھی خوبصورت نہیں ہو سکتے. قرآن حقیقت میں ایک انسان کو نکھارتا ہے اور اسی کی وجہ سے دنیا میں مختلف شخصیات ابھری. اگر آپ اپنے اس پورے تعلیمی سفر میں गौर करें तो आपने कितनी शख्सियात को देखा और पढ़ा होगा। इमाम बुखारी का नाम बकसरत सुना होगा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का नाम सुना होगा। ये इल्मी शख्सियात थी, क्या खूबी थी इनकी। आज आप देखिए कि हमारी नज़र में किसी की खूबसूरती या उसका घर, उसकी दौलत, उसकी माल, हमें बाज़ दफ़ा ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। आप किसी का बहुत तذکرہ सुन चुके हो, बहुत ही वो स्क्रीन पे चमकता चमकता दिख रहा है, सब कुछ उसका आपको अच्छा लगे, लेकिन बात करे तो बात करने का सलीका ना आए, खाए तो चपड़ चपड़ खाए, चले तो थड़प थड़प पाँव चलाए, आपका सारा कॉन्सेप्ट उसका उतर जाएगा। कपड़े, जूते, खाना, बड़ी गाड़ियाँ, ये हमारी इज्जत नहीं है। ये दूर से लोगों को एक वनीर चढ़ा हुआ, एक कवरिंग, एक हमारे ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई दिख सकती है, दूर से लोग हमें अच्छा समझेंगे, वाह इतने बड़े घर से निकलती हैं, खुशकिस्मती होंगी, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठती हैं, बहुत ही बानसीब होंगी। बट जब आप उनसे बात करें और उनका कोई IQ नहीं है, कोई उनके अंदर कोई वो खूबी नहीं है, तो आप समझें कि ये कुछ भी नहीं। जैसे बड़े लोग कहते थे कि एक भैंस के ऊपर कोई ना कोई चमकता हुआ दुपट्टा, कपड़ा, को उसके गले में घंटियाँ बांधनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें ज़ाहिर कोई खूबसूरती नहीं होती, तो फिर उसको उल्ट ऊपर की चीज़ों से सजा देते हैं। लेकिन जिसको कहते हैं कि ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, खूबसूरती जो है वो जेवरात की मोहताज नहीं होती ना, ये मुहावरे हमने सबने सुने हुए हैं। तो लिहाजा इससे क्या पता चलता है कि तालीम महज मालूमात हासिल करने का नाम नहीं है। ये जुमले लिखें, अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर मैं दर्स दूंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी नहीं वो बातें जो एक माँ अपनी बच्ची को सिखा सकती है या एक उस्ताद शागिर्दों को सिखा सकता है, क्योंकि मैं तो यही सोच लेकर आई हूँ कि मैंने आज दर्स नहीं देना, मैं तो आपसे सुनना चाहती हूँ। कुरान सीखने के बाद, अल्लाह की इस किताब को हर रोज़ थामने के बाद, इतने इसके रुकू, इतने सबक पढ़ने के बाद, और आप सब जो साथी बाकायदा तालिबे इल्म नहीं भी थे तो कुरान तो हम सभी पढ़ते हैं। जनरल बात कर लेते हैं कि आज के दौर में कौन है जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी जगह किसी न किसी नाते से नहीं सुन रहा, चाहे को व्हाट्सएप पे सुन ले, स्काइप पे सुन ले, पेलटॉक पे सुन ले, घरों की क्लासेस, स्कूलों की क्लासेस, मस्जिदों की क्लासेस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अब इल्म का दौर दौर है, सोई भी उम्मत उठ रही है। कितना कुछ सोएंगे, एक बंदा 8 घंटे सो जाएगा, 10 सो जाएगा, 12 घंटे बाद तो वो कहते हैं मुर्दे भी उठने लगते हैं, जिंदा इंसान नहीं सो सकता इससे ज़्यादा, तलब जागती है। हमारी उम्मत बहुत साल सोई, अब जाग रही है। तब जब इल्म का दौर दौरा हो रहा है तो अब हमने क्या समझा बाज़ दफ़ा कि इल्म मालूमात का नाम है। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बच्चियों से भी मिलने की का इत्तेफाक हुआ कि जिन्होंने 7-7 साल का कोर्स किया होता है, लेकिन चाल चलन में, उठन बैठन में, और फिर आपस में उस इल्म को पाने के बाद दूसरों से ताल्लुकात में वो रंग नहीं दिखा, तो फिर मुझे समझ आई कि इन्होंने मालूमात ली, सर्फ नहव याद हुआ और आपकी गलतियां निकल गईं, तजवीद खूबसूरत हो गई, इनके कई जहनी मतलब लेवल जो थे वो बुलंद हो गए, बहस मुबासे में भी आएंगी, बट इनकी अमली तरबियत नहीं हुई। तो याद रखिए कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। असल दीन का हुसन मुझे जो समझ आई है ना, इतने खूबसूरत किरदार लोग तैयार हो जाएं कि चलते फिरते उनको लोग पूछें ये हैं कौन, ये किस सांचे से निकले हैं। नबी सल्लम की बहुत बड़ी कामयाबी क्या थी कि उन्होंने लोगों का और इंसानों का एक ऐसा गिरोह तैयार कर दिया था कि जिसको कुरान ने खूबसूरती से बयान किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, सहाबा की जो खूबियाँ सुरफत की आखिरी आयत है आप जाके पढ़ लीजिए, रुहमा बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, चेहरों पे उनके आजजी के निशान हैं, उनके अंदर खूबसूरती है। तो दीन जब अंदर जाए तो इंसान को कैसा होना चाहिए, जैसे आप एनर्जी ड्रिंक पिए तो एनर्जी आए। आप किसी चीज़ को एक साल तक एक सांचे में रखें, चले मिसाल देती हूँ, बस लोगों के दांत थोड़े से उनके ख्याल में ऊंचे होते हैं, हालांकि अल्लाह ने सबके ठीक ही रखे होते हैं, तो वो ब्रेसिस लगवाते हैं, तकरीबन 1-2 साल तक वो ब्रेसिस के अंदर रखते हैं, और फिर क्या होता है कि जब उतारेंगे तो दांत थोड़े से दब चुके होंगे। कोई 1 साल तक ब्रेसिस लगाए रखे और उसके बाद जब खोले तो दांत फिर वैसे के वैसे। इस पर एक हमारे यहाँ मुहावरा भी है दुम के बारे में, है ना, तो हम कहेंगे कि ये क्यों नहीं चेंज आ रहा। अब आप अपने ऊपर लेकर सोचिए कि आप और मैं इल्म ले रहे हैं, दीन दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हमारे किरदार में कौन गवाहियां दे रहा है। यानी मसलन अगर आप इधर आके हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जहाँ भी आप पढ़ते पढ़ाते हैं, इतने दिन रोज 2-2, 3 दिन, 4-4 घंटे पढ़ते हैं, तो अब ये गवाही कहाँ से मिलेगी। क्या आपके पेपर्स को चेक करेगा, कोई आकर आपकी तजवीद सुनेगा, ग्रामर सुनेगा, वो तो एक आम चीज़ है ही है, वो तो 1 साल 2 साल तक रहेगा सारी उम्र। अब मेरा टेस्ट कौन ले रहा है, मेरा इम्तिहान कौन ले रहा है, कोई भी शागिर्द आप देखिए कि सारी ज़िंदगी शागिर्द भी रहे लेकिन इम्तिहान शुरू में ही होते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो किरदार की गवाही है वो आपके इर्द गिर्द वाले हैं। जब हमारा किरदार बनेगा फिर असल में हम तब्दीली लाएंगे। जैसे अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना कि दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है बसरे, ये किरदार था। तो नोट कर लीजिए ये बात कि ऐसी खूबसूरत शख्सियत की तामीर सिर्फ उस वक्त मुमकिन है कि जब तालीम के मफहूम में सिर्फ मालूमात नहीं, इल्म को हासिल करना ही नहीं, बल्कि किरदार साजी, तरबियत, तख्लीकी अनासर, आप में क्रिएटिविटी आए, आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद समझ जाएं, आपको बेचैन नहीं लग जाए कि अब मैं फारिग नहीं रह सकती। मेरी नज़र में कामयाब तालिब इल्म वो है कि जो पढ़ने के दौरान अगले प्लान बना लेता है, जिसको एक तड़प लग जाती है, तलब लग जाती है, अरे मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। अब यानी आपने आप सबसे चंद लोगों से पूछा ना कि अपनी राय दें, तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें बताई, किसी को शुक्र मिला, किसी को सब्र मिला, किसी को सुकून मिला, किसी को इत्मीनान मिला। एक जुमला मैंने आप में से किसी से नहीं सुना, जो होगा सबके पास, भूल गए कहा नहीं, और वो क्या कि मुझे मकसद हयात मिल गया, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी। ये कॉन्सेप्ट तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे बच्चे को आज पढ़ाने वाला है, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। क्या मतलब? मेरे मुसलमान होने का मकसद, मेरी नमाजों का मकसद क्या है? तेरी दीन की सरफराजी। बीइंग अ मुस्लिम, आपका मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम इंसानियत को सर्व करें। हम जॉब पे हायर्ड लोग हैं, हम फारिग लोग नहीं हैं, हमारे पास काम है। कुन तुम खैर उम्मत अखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन गिरोह हो जो लोगों के लिए तैयार किया गया। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को बुराई से रोकते हो, भलाई का हुक्म देते हो, नेकियों की दावत देते हो। वमन अहसनु कौला मिम्मन दाअ इलल्लाहि व अमिल बिही, कौन उससे खूबसूरत हो सकता है जो दीन की दावत दे, जो अल्लाह की तरफ बुलाए और उसके बाद फिर वो उस पर अमल भी करे, और अपना तारुफ किसी जमात, किसी गिरोह, किसी इदारे से करने की बजाय क्या कहे, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूँ। तो याद रखिएगा कि आपके मेरे लिए अब सबसे बड़ा मरहला है। आपने ड्राइविंग सीखी, आपने 20 क्लासेस ली, आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर बैठा या बैठी, जिसने भी सीखा जैसे सीखा उसने उसको गाइड किया। बाज़ दफ़ा तो गाड़ियों में दो दो स्टेयरिंग होते हैं, वो भी कंट्रोल करते हैं, आप कोई गलती कर रहे थे उसने रोक लिया, आपको ब्रेक लगानी थी आपने नहीं लगाई उसने लगा ली, आप स्लो थे फास्ट करना था उसने क्लच को दबा दिया, हुआ ना। लेकिन जिस दिन आप खुद अपनी गाड़ी रोड पर लेके निकलते हैं, जिस दिन आपने खुद ड्राइविंग करनी है, वो आपका इम्तिहान होता है। तो ये असल में आपका सबसे बड़ा मरहला ज़िंदगी का क्या है कि जब आप इस प्रोटेक्शन से निकलते हैं फिर क्या करते हैं, क्या प्लान है आपके पास? कुरान आपका पूरा होने वाला है, हो चुका, हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ख़त्म कभी नहीं होता कुरान, याद रखिए, ख़त्मुल कुरान कोई चीज़ नहीं है, तकमील कर देते हैं जैसे तैसे हम लोग करके, लेकिन आखिर आपने इसके बाद करना क्या है? अगर आप ये सोचते हैं घर बैठना है, तो फिर मिसाल वही है कि 5 साल मेडिकल में पढ़ने के बाद बच्ची कहती है या मर्द कहता है कि बाप बस अब मैंने जी घर ही बैठना है, अक्लमंद कहते हैं लोग उसको, यानी एक लड़का जिस पे माँ बाप 5-10 लाख 20-25 लाख रुपया लगाते हैं और वो इतने साल पढ़ने के बाद घर बैठ जाए, तो वो क्या कहेंगे कि हमारे पैसे ज़ाया हुए, और अगर तुमने दुकान ही खोलनी थी तो फिर हमें पहले बताते, समझ गए ना। हुआ क्या, उसको मेडिकल की कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल गई, उसको बॉडी की वर्किंग समझ आ गई, बट अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आपको पता क्या होगा, 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर तो जितना मेडिकल का पढ़ा होता है सब पुराना हो जाता है, नई नई बीमारियां जैसे निकल रही हैं ना, आप खुद देखते हैं, आपने कभी एड्स का नाम नहीं सुना था पहले, हेपेटाइटिस आज से 10 साल पहले नहीं सुना होगा, बीमारियां जैसे बढ़ती हैं ना इसी तरह फिर इलाज बढ़ते हैं, तरीका इलाज बदल रहे हैं, पहले हेमोपैथी था, एलोपैथी था, अब आप देखिए रेडियोलॉजी आ गई, कहीं लेज़र आ गया, फ़र्क है ना। तो डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है, तो फिर होगा क्या कि अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो कुछ सालों बाद बिल्कुल जहन साफ हो जाएगा, और ये जो अमल के मोती बंदे की शख्सियत के साथ झड़ते हैं ना, ये सुनने के साथ झड़ते हैं। जिसने अपने तालीमी सफ़र को यहाँ छोड़ दिया, जिसका तालीमी सफ़र रुक गया, लिख लीजिए कि उसका ईमानी सफ़र भी रुक जाएगा, उसका तकवा का लेवल भी रुक जाएगा, शुरू में रुकता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर डाउन पे चला जाता है। आपने कभी इस्तेमाल शुदा गाड़ी कहीं खड़ी की हो, आप बाहर चले गए, 6 माह तक आप बाहर से आई नहीं, अब आपकी गाड़ी बाहर खड़ी रही। 6 माह के बाद जब आए, चाबी दो, चाबी खोली, गाड़ी में लगाई, गाड़ी चली नहीं। क्या कहते हैं लोग, कहते हैं इसकी बैटरी डाउन हो गई। अब आप देखिए कि चलती गाड़ी को जब कुछ अरसा इस्तेमाल ना करें तो बैटरी डाउन, चलते फ्रिज को कुछ अरसा बंद कर दें तो जंग लग जाता है, बू आती है। आप अपना बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा जो बना हुआ बिल्कुल न्यू घर है, फर्निश जो भी है, आप उसको बंद करके 1 साल के लिए चले जाएं। मैंने अभी चंद दिन पहले ही कुछ मंजर देखे, एक सिस्टर थी वो बाहर चली गई और मुझे पता है कि बहुत नफासत पसंद होंगी जब इधर होंगी। जब सामान बंद किया और अब खोला तो वो ऐसे लग रहा है कि कोई मुफ्त में भी ना ले, कीड़ा लग जाएगा, सेंक लग जाएगी, मट्टी पड़ेगी। बात समझ आ गई है ना, ये 2-3 मिसालों से। और वो क्या है कि चलती रहे चीज़ तो काम आती है। आपका मेरा जिंदगी का ये सफर 1-2 दिन का नहीं, आप पर मैं क्या, अब हम फारिग हैं, एक मुसलमान कभी फारिग नहीं होता। आपकी मेरी जिंदगी में कभी भी वो दिन नहीं आना चाहिए कि मैं ये सोचूं कि मैंने पढ़ लिया है, कभी भी ये सफर नहीं आना चाहिए कि मैं आलिमा बन गई, कभी भी ये वक्त नहीं आना चाहिए कि आप कहते हैं कि आप, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं, बस अगर यहाँ कोई कोर्स शुरू करें और आपको कहा जाए तो आप कहते नहीं मैंने तो कोर्स कर लिया हुआ है। मजीद इल्म सीखने की तलब इस बात की दलील है कि पिछला इल्म हजम हो रहा है। और खाना कब खाते हैं आप, जब पिछला हजम हो जाता है। और आपको कुछ खाना कि आपकी पसंद की चीज पेश करें और आप देख ही नहीं रहे, वजह क्या है, पिछला नहीं हजम हुआ। अच्छा, पिछला ना हजम होने की क्या वजह होती है, अमूमन 2 वजूहत होती हैं। जो खाया खाना वो स्कील था, पाए खा लिए माशाल्लाह, और वो भी पराठों के साथ, पता नहीं दिल उस दिन क्या रो रहा होगा, हाय बचाओ बचाओ। मैं अक्सर सोचती, कई लोग हैं वो पाए के साथ पराठे खाते हैं, तो मैं कहती हूँ ये दिल को जरा पकड़ के रखना फिर खाना, हो गया ना। अब खाना स्कील था एक वजह, और दूसरी वजह खाया तो ठीक था पर खाते ही सो गए, काम नहीं किया, मूवमेंट नहीं की, वॉक नहीं की। अब आप अपने ऊपर लीजिए, आपने इल्म लिया, आप ले रहे हैं, आप लेते रहेंगे इंशाल्लाह, अब मजीद इल्म लेने को दिल नहीं कर रहा। आप सोचते हैं सो के काफ़ी है, घर वाले तो पहले ही मुंतजर थे, अगर कोई बहू है तो सास तो दिन गिन रही होंगी, बहू कब वापस घर में आए, इस वक्त रोटियां पकाए, खाने पकाए, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बड़ी खिदमत की, आपको 2-4 साल के लिए पढ़ने पर डाल दिया। अगर आप एक माँ हैं तो बच्चे कह रहे होंगे अम्मी अब आएंगी तो दोपहर को गर्म खाना बनाया करेंगी, शौहर है, यानी जब हम थोड़ा सा भी दीन सीखने लगते हैं ना, इतना सा आटे में नमक, सब दावेदार बन के खड़े होते हैं। अब क्या होगा, आप कहती हैं कि ठीक है, अब क्या हुआ कि जब आपने पिछला इल्म हजम नहीं किया तो आप मजीद नहीं लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो भूखे कभी उनका पेट नहीं भरता, एक दौलत का भूखा, हल मिम मजीद, हल मिम मजीद, और भी है तो ले आओ, और भी है तो ले आओ। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत की हवस ने तुम्हें इतना आगे कर दिया कि तुम कब्रों तक पहुंच गए। और दूसरा भूखा है इल्म का भूखा, और याद रखिए थोड़ा इल्म अकड़ पैदा करता है, अकड़ ही बड़ी हो जाती है, पढ़ लिया जी आ गया जी, और राह जाते लोगों को फतवे भी देंगे और गुन्ने कर करके दिखाएंगे और तजवीद की गलतियां और ग्रामर की बातें करेंगे। ज़्यादा इल्म आएगा ना तो नरमी आएगी। चलो अभी आपको बेसिक करेक्टर दूंगी इस उम्मीद के साथ कि अब आप सब ने फ्यूचर में उस्ताद भी बनना है, मजीद सीखना है। अब आप देखिए कि थोड़े इल्म से अकड़, नए इल्म से अकड़, ये कैसे, नया कपड़ा लेकर आए बाजार से, लगता तो बड़ा प्यारा है पर पहनना तो चुभा, नए कपड़े पहन के आप रिलैक्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कौन से कपड़े पहनने को मज़ा आता है, 3 साल पुराने कम अज़ कम, धुले हुए सॉफ्ट, कहीं से आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, बदलते हैं कपड़े, दूसरों को तो दिखा दिया, अब अपने घर वालों को असल पे ले आए, ऐसे ही है ना। नया नया इल्म बहुत अकड़ लाता है, ना चाहते हुए भी आती है, लोगों को नहीं पता होता, वो जुबान से बड़ा कहेंगे हम बड़े ऐसे हैं, हम तो बड़े ही अल्लाह से डरते हैं, ये है वो है, नहीं, अंदर कई बड़ाई का एहसास है। और आप देखिए दूसरों से बात करेंगे तो दूतकार, हाँ ये गुनाहगार, ये काफिर, ये जहन्नमी, ये मेरी कज़न ऐसी हैं, ये मेरी दोस्त ऐसी हैं, मैं ये नहीं आएंगी, मैं नहीं इनसे अब बैठती। एक मैंने बहुत आम चीज़ देखी है लोगों में, और वो क्या है कि मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया, किसी मुल्क में मैं गई तो वहाँ कोई सिस्टर्स थी तो क्लासेस शुरू की उन्होंने, ले रही थी कुछ, अभी 5-6 पारे हुए हैं। मैंने कहा सुनाइए कैसी हो रही है। यकीन करें अपनी तरानी में करी, अब मैंने अपनी सारी दोस्तों को छोड़ दिया। मैंने कहा बड़ी अफसोस की बात है, क्यों भी आपने कुछ? नहीं, उनको तो बस बाजारों से और शॉपिंगों से और किटी कैटी पार्टियों से फुर्सत नहीं। तो मैंने कहा सबको छोड़ा है, चले जान छुटी, आप क्या आप अकेला होना चाहते हैं? क्या ये खूबी की बात है? आज आपने छोड़ा, कल वो आपको छोड़ देंगी। ऐसा नहीं करना, याद रखिए छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। इस्लाम काटना नहीं चाहता, जोड़ना चाहता है, इस्लाह चाहता है। 23 साल की जो चुमुखी जंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी, ये काटने वाली होती तो 4 महीने में सब कुफर का सफाया हो जाता, तलवारें लेते, सबको मारते, ख़त्म करते। नहीं, दिलों को बदला। आप देखिए वही सहाबा थे ना, कुफर के दिल दादा ईमान के दिल दादा हो गए। दुनिया की मोहब्बत ही आखरत का फिक्र लग गया, तरजीहात बदल दी आपने। असल जो बात है, तो जो एक शख्स जिसको अल्लाह ताला दीन के लिए चुने, जो तालीम व तरबियत का एक बुनियादी उनसर है, वो सबसे पहली चीज़ अपनी नीयत को चेक करें, इखलास नीयत। क्या मैं ये सब अल्लाह के लिए कर रही हूँ? इखलास ही असल में काबिलियत है, बरकत है ही इखलास की। देखिए आज तो हर चीज़ के लिए लफ्ज़ आता है, इधर मैंने नहीं सुना लफ्ज़, लेकिन होगा। या हम कहते हैं प्योर देसी चीज़, देसी मुर्गी खा लो, ऐसे कहते हैं ना, फ्रेश जूस पी लो। बाहर के मुल्कों में एक लफ्ज़ आजकल बहुत कॉमन है, ऑर्गेनिक। दो डब्बे रखे हुए हैं आपके सामने काउंटर पे, एक रेगुलर मिल्क और एक ऑर्गेनिक मिल्क है। दोनों में कम से कम $3-4 का फ़र्क होगा। क्यों? ऑर्गेनिक है ना, उसको पैस्चराइज किया गया ना, उससे विटामिन निकाले गए, बस ऐसे ही, जिसको आप कहेंगे आपके गवाले का दूध। आप सब ऑर्गेनिक दूध पीते हैं, शर्त है कि गवाला उसमें पानी ना डाले और गंदगी ना हो। बिलीव मी, जितना हम चीज़ों को टच करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, उतनी वो चीज़ें अपनी असल तरकीब को बदल देती हैं। इसी तरह से याद रखिए कि अखलास क्या है, कि यू शुड बी ऑर्गेनिक। आपका मेरे यहाँ जाना क्यों है, कभी आपने सोचा? आप इमेजिनेशन में लाएं, अगर आप यहाँ ना आती तो क्या आपका बिगड़ता? और अगर आप ना आती तो कुछ बिगड़ता? तो फिर यहाँ से ले के क्या जा रही हैं? क्या ये सिर्फ एक दर्स है? इतना इख्तमाम उसके लिए, इतनी मेहनत उसके लिए? नहीं, आपको मुझे इस सोच के साथ रखना चाहिए, शायद आज का ये मौका, आज की ये क्लास मेरे जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। आपको मुझे क्या पता कौन सी नेकी आपके मेरे जन्नत में जाने का जरिया बने, कौन सी नेकी मुझे असहाबुल जमीन से निकाल कर साबिकून अलवलून में डाल दे, किसको पता है? ला तख्तकिरन्ना, अल्लाह के नबी ने कहा मत हकीर जानो किसी भी नेकी को, छोटी से छोटी नेकी। ईमान की जो 60 से 70 शाखें हैं, उसमें सबसे हल्की शाख क्या है कि इमातुल अज़ा अने तरीक, रास्तों से तकलीफ दे चीज़ों को उठा दो। केले का छिलका उठा दो, पत्थर पे पाँव आया उसको उठा दो, कांटा उठा दो, कि मेरा पाँव जो ख़राब हुआ किसी और का ना हो। तो क्या पता चला कि इंसान को कभी नेकी को हकीर नहीं जानना चाहिए, बड़े मकसद के साथ जीना चाहिए। तो आप जब भी आए, जब भी जहाँ जाएँ, सीख रहे हैं, अब आपने लिया, देखिए 3 मरहले में बता देती हूँ आपको तालीम व तरबियत के, जिसके बाद आप खुद चूज़ कर सकती हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं। एक चीज़ होती है सीखना, आप सही सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फौरन इसके बाद हमारे जहनों में एक लफ्ज़ आता है सिखाना, सीखना सिखाना। बहुत बड़ी गलती करते हैं कुछ लोग, गौर से सुनिएगा इस जुमले को, सीखने के बाद सिखाने लग जाते हैं फौरन, हालांकि सीखने और सिखाने के बीच में तरबियत का मरहला आता है। आप सोचें गाड़ी में आप आज तक कितनी दफ़ा बैठी, गिन ही नहीं सकते आप पर मैं, हर दिन गिन लिए, एक दिन में 2-3 दफ़ा तो बैठे होंगे। चले अपनी ज़िंदगी के दिनों को गिन लीजिए, जब से गाड़ी ली है, जब से शादी, कोई भी बैक कैंट पे जाइए, तब से लेके हर दिन चले एक दफ़ा तो गाड़ी में बैठे, तो माशाल्लाह कई कई 100 के 1000 बार बैठ चुके हैं ना। क्या आपको गाड़ी चलानी आ गई? क्या अब आप गाड़ी में बैठने की वजह से गाड़ी चलाने लगे? ये बहुत बड़ा कमी है। आज जहाँ इल्म आम हो रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ी खराबी ये है कि वो लोग इल्म सिखाने लग जाते हैं और वैसा इल्म देने लगते हैं जिसको कच्चा पक्का इल्म कहते हैं। किरदार कोई नहीं है अंदर, इल्म बहुत है। नुकसान क्या होगा कि आपकी बात में तासीर नहीं होगी। जब आप सीखते, सिखाने से पहले बीच में आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग को आप एडवांस कोर्स कहते हैं, उसको आप अपनी मज़ीद परख करते हैं। यानी मैं आपको एक छोटा सा नक्शा दिखा सकती हूँ, यानी जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं नूरुल कुरान का, उसमें क्या तरीक़ेकार होता है। सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी जगह एक बिल्कुल बैरन लैंड है, चले आजकल हमने सियालकोट में एक नया बीच डाला है, उसकी कहानी सुना देती हूँ कि सबसे पहले किसी भी जगह में दीन के नाम पर छोटे छोटे दर्स होते हैं। जैसे आपके पास आए उधर के, अब कुछ लोग आप जैसे आए और दरसों में हजारों लोग आ जाते हैं, क्लासों में चंद सौ भी नहीं आते, ये भी याद रखिए। मैं तो कहती हूँ नबी सल्लम का एक दीदार हो अगर दुनिया में, सारी दुनिया के मुसलमान टिकटें लेके जहाज़ों में खड़े होके आ जाएं और अल्लाह के नबी वहाँ 3 दिन का कोर्स करा लें तो उसमें से कोई 2-4% कम ही हो जाएंगे, और अल्लाह के नबी वहाँ ज़रा 1 हफ्ते का कोर्स करा लें तो 20-25% निकले, और अल्लाह रहम करे अगर 1 महीने का कराने लग जाएंगे तो उम्मत आदि तो मसलतों का नज़र होगी। इल्ला माशाल्लाह, मैं बदगुमानी नहीं कर रही, कभी कभी फंक्शनली शोर मचा कर बहुत ज़्यादा लोगों में मतलब घुलना मिलना मिक्सिंग, चलो जी मिलेंगे थोड़ी सोशलाइजिंग होगी, हज़ारों इसके लिए तैयार हैं, संजीदा तालीम के लिए आज भी लोग पूरी तरह तैयार नहीं है। वक्त की पाबंदी, कुर्बानी मांगती है, सुबह उठ के आना वक्त कुर्बानी मांगता है, 2-2.5-3 घंटे बैठना कुर्बानी मांगता है, फिर आप देखिए सेलफोन से दूरी, बीच में फ़ोन नहीं सुनना कुर्बानी मांगता है। इल्म सब्र और कुर्बानी से आता है, इख़लास नियत होगा ना फिर इंशाल्लाह ताला आगे लेकर चलेगा।